दत्तस्य सिद्धनम् मामृदत्तस्य सिद्धनम् मामृदत्तस्य सिद्धनम् हरिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 जय स्वामीनारायण। ईशावास्योपनिषत् आज ईशावास्योपनिषद का हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब जो हमारे शास्त्र है, शास्त्रम नाम किम्, शास्ति सर्वान् जनान् इति शास्त्रम्। संस्कृत में एक धातु है शास अनुशिष्टो, जो सबको नियम में रखे उसको शासन बोलते हैं। अनादि काल से इस सबको नियम में कौन रखता है तो वो है शास्त्र। तीनों काल में समान रूप से चलते हैं वो है शास्त्र। और इसीलिए हमारे जीवन के लिए हमारे सच्चे पथ दर्शक है तो वो है शास्त्र। और इसीलिए आदि शंकराचार्य जी महाराज ने साधन पंचक बताए हैं। और वो साधन पंचक में एक साधन बताया वेदो नित्यम अधीयताम, नित्य वेदो अधीयताम, अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अधीयताम मानो कि अधीयताम अर्थात शास्त्रों का अनुसंधान मनन चिंतन करना चाहिए। शास्त्र एक ऐसे द्वार है कि वो द्वार पे गया हुआ व्यक्ति कभी निराश होके वापस नहीं लौटता। यू नॉक द डोर इट विल बी ओपन्ड। ये एक ऐसा द्वार है कि ये द्वार पे आप जाएंगे तो ये द्वार खुलेगा ही खुलेगा। जैसे हमारे संप्रदाय में एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है वचनामृत। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है और उसके लिए तो एक बहुत प्रसिद्ध है कि आप कभी मुश्किल में है, चिंता में है, टेंशन में है, कुछ सूझ नहीं रहा तो दो मिनट आंखें मूंद के ध्यान करके मन को स्थिर करके आप वो ग्रंथ को खोलेंगे, जो पेज आएगा वो पढ़ेंगे तो वही पृष्ठ में आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। वैसा ही गीता के बारे में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब शास्त्र क्या है? कई प्रकार के ग्रंथ होते हैं, उसमें ये वेद उपनिषद ये जो सब ग्रंथ है वो अध्यात्म शास्त्र है। आत्मनी अधीति अध्यात्मम, आत्म विषयक शास्त्र है। प्रश्नों का समाधान बाहर करने की बजाय यदि उसके मूल में हम पहुंच जाते हैं तो कोई भी प्रश्न का समाधान हम कर सकते हैं। हमें कोई वृक्ष में फल चाहिए तो एक एक शाखा पे जाके फल लटकाएंगे, फूल लटकाएंगे से तो ऐसा ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जैसे वसंत ऋतु आती है, चैत्र मास में अमृतसव होता है, तो जिस आम के पेड़ के नीचे अमृतसव करते हैं तो उनमें वो आम के फल तो होते हैं किंतु अच्छा दिखाने के लिए वो दोरी से कहीं आम चारों ओर लटका देते हैं। एक दो दिन के लिए तो दिखने में अच्छा रहता है किंतु क्या वो सच्चे फल है? यदि सच में हमें फल चाहिए तो ऊपर लटकाने के बजाय, सच में वृक्ष का विकास करना है तो ऊपर से पानी छंटकाव करने के बजाय यदि हम उसके मूल में पानी डालेंगे, मूल में खाद डालेंगे तो अंदर से वृक्ष का विकास होगा, अंदर से पुष्प निकलेंगे, अंदर से फल निकलेंगे। तो ये हमारे जो अध्यात्म शास्त्र है वो क्या करते हैं? वो व्यक्ति को अंदर से तैयार करते हैं। यू नॉक द डोर इट विल बी ओपन, ये द्वार खुलेंगे ही खुलेंगे। तो ये शास्त्र क्या है? हमारे गुरुदेव कहते थे कि शास्त्र है वो अनुभव के घड़े है। कोई अनुभव करने में हमें महीना, दो महीना, साल, दो साल, कहीं अनुभव ऐसे होते हैं कि 40-50 साल के जीवन के बाद प्राप्त होते हैं और अनुभव करते करते हमारा जीवन तो पूर्ण हो जाता है। बहुत कम समय में बहुत अच्छा जीवन जीना है तो हमें क्या करना है? तो ऐसे महापुरुषों के अनुभव हमें शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। जैसे पाश्चात्य देश में, हमारे देश में वेल लिसनर, जो ज्यादा श्रवण करता है उसकी महिमा है। पाश्चात्य देशों में वेल रीडर, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है वो बड़ा कहलाता है। तो ऐसा एक उसका नाम था कॉपीमर। अपने जीवन में बहुत पढ़ा उसने, करीबन 6000 किताबें पढ़ी। कितनी? 6000। एक दिन में एक किताब पढ़नी है ऐसा नियम रख के भी चले तो भी 6000 किताब पढ़ने में 17 साल लग जाते हैं। हर रोज एक किताब पढ़े तो भी 6000 किताबें पढ़ी, उनका ज्ञान, उनका विचार, चिंतन, बहुत सफल जीवन था। तो किसी ने उनको पूछा कि अपने पूरे जीवन काल में आपने 6000 ग्रंथ, किताबें, पुस्तकें पढ़ी है तो हमें उसका सार बताएंगे? तो कॉपीमर ने बोला कि 6000 ग्रंथों के सार रूप मैंने अपने जीवन के लिए और पूर्ण जीवन के लिए 1000 सिद्धांत निकाले हैं। 6000 में से कितने? 1000। और यदि ये 1000 सिद्धांत जो मैंने सफलता के रहस्य रूप, चाबी रूप निकाले हैं, वो 1000 सिद्धांत का भी सार मुझे कोई एक वाक्य में बोलने को कहे कि मेरे जीवन काल में मैंने जितने दर्शनों का अभ्यास किया है, जितनी फिलोसॉफी पढ़ी है, सबके सार रूप में मुझे यदि एक वाक्य में कुछ कहना है जीवन की सफलता का मंत्र, तो मैं उतना ही कहूंगा, लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। क्या लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल, अपने अनुभव से चलेंगे, अपने अनुभव से ही निर्णय करने के बाद ही आगे का रास्ता तय करेंगे, तो ये जीवन तो बहुत छोटा पड़ जाएगा। जीवन बहुत छोटा है और ये छोटे से जीवन में हमें बहुत कुछ पाना है। 30, 40, 50 साल के जीवन काल में जिन्होंने अनुभव पाया है, अनुभव वो ग्रंथों में निहित किया है, वो ही अनुभव यदि हम सीधा स्वीकार लेते हैं तो हमें उतने साल कम लगेंगे जीवन में। सही है ना जय भाई? बहुत कम समय में हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए यही तो सार हुआ कि लर्न फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। जीवन में जो सफल है तो उनके पास से कुछ सीखे। तो यदि हमें जिज्ञासा होती है कि कुछ करना है, कुछ सीखना है, जीवन में कुछ पाना है, एक सफल जीवन जीना है, यही जीवन के फल स्वरूप हमें पूर्ण संतोष प्राप्त करना है और वही आनंद की भूमिका में यही जीवन में मुक्त दशा का अनुभव करना है, ऐसा कोई ऊंचा जीवन में ध्येय है, तो ये ध्येय लेके हमें कहां जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? जैसे शंकराचार्य जी ने तो कहा कि वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य अध्ययन करो, श्रवण करो, किंतु कहां जाना चाहिए? तो उसके लिए ये प्रश्न के लिए बहुत चिंतन हुआ पूरे विश्व में, आज तक अविरत हुआ और अभी भी होता ही है। तो जैसे पाश्चात्य देशों में जिन्होंने चिंतन किया उसको हम आज बोलते हैं फिलोसोफर, जैसे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल और आदि आदि कई फिलोसोफर हुए, वैसे ही हमारे भारतवर्ष में यही विषय पर खोज शुरू हुई और उसको हम बोलते हैं दार्शनिक। क्या? दार्शनिक एक प्रकार की अध्यात्म फिलॉसफी है, जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, उसके लिए पाश्चात्य देशों में भी बहुत चिंतन हुआ और हमारे देश में भी बहुत चिंतन हुआ। हमारे देश में जो चिंतन हुआ वो ऋषि महर्षियों ने चिंतन किया, वो सब दार्शनिक कहे जाते हैं। पाश्चात्य देशों में जो चिंतन हुआ उनको फिलोसोफी कहा जाता है। फिलोसोफी, सोफिया, विचार, जो पाश्चात्य चिंतन है वो विचार की नींव पे खड़ा है, सतत विचार करते हैं, सतत विचार करते हैं और बुद्धि से उन लोगों ने जो चिंतन किया इसलिए उनका जो शास्त्र है उसको विचार शास्त्र बोलते हैं। क्या? विचार शास्त्र, सतत चिंतन किया और विचार, विचार ही विचार, विचार ही विचार, इसलिए बुद्धि का सतत विकास होता रहा, चिंतन होता रहा और बुद्धि का, चिंतन का विकास होने के फल स्वरूप उन्हें प्राप्ति हुई। क्या हुई? बुद्धि बहुत आई और बुद्धि के फल स्वरूप लौकिक विषय में बहुत एक्सपर्टाइज प्राप्त कर ली, कहीं संशोधन हुए, कहीं इनोवेशन हुए जो बाहरी जगत में ज्यादा हमें दिखाई पड़ते हैं। वाइस वर्षा हमारे जो महर्षि थे उन्होंने भी चिंतन किया किंतु बुद्धि के स्तर पर नहीं, जीवन के और अनुभूति के स्तर पर चिंतन शुरू किया और उसीलिए हमारे जो शास्त्र है वो बाहर से ज्यादा अंदर का ज्यादा हमारे दर्शन है वो निरूपण करते हैं। आज पाश्चात्य जगत में जो विकास होता रहा है, हो ही रहा है, और यही विकास के फल स्वरूप हम सार रूप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यदि बोले तो क्या है, मोबाइल। हमारे ऋषियों ने जो अंदर चिंतन किया तो उनके सार रूप हमारे ऋषियों ने जो खोज की है वो अध्यात्म तत्व की खोज की है, योग की खोज की है, अंतर साधना की खोज की है। ऊपर से हम बहुत आगे बढ़ गए, किंतु यदि अंदर से पूरा नहीं हुए तो वो हमें कभी पूर्ण तृप्त नहीं कर सकेगा। कैसे, हमारा कोई फोटो लेता है कैमरा से, फोटो बहुत अच्छा आता है, किंतु एक्सरे नेगेटिव आता है तो उसको वाकई आप स्वस्थ मानेंगे? फोटो अच्छा है किंतु हमारा ब्लड का जो टेस्ट है वो नेगेटिव है, ब्लड कैंसर आ गया, दिखाई देखने में तो भाई बहुत अच्छा दिखाई दे रहे हैं, किंतु अंदर का टेस्ट बोलता है कि आपको ब्लड कैंसर है, कुछ ऐसे रोग है, तो हम उसे वाकई स्वस्थ नहीं मानेंगे। फोटो थोड़ा ऑर्डिनरी रहेगा तो चलेगा, किंतु अंदर से यदि स्वस्थ है तो हमें जीवन जीने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसीलिए पाश्चात्य जगत में जो चिंतन हुआ वो बाहरी बुद्धि के स्तर पर, मन के स्तर पर बहुत चिंतन किया, इसलिए वो विचार शास्त्र बन गया, विचारक बन गया, और विचार करते 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 वो कहीं पर आके रुकते हैं, और अनुभूति की और जिज्ञासा प्रकट होती है, तो विचार शास्त्र की जहां पूर्णाहुति होती है वहां से हमारे दर्शन शास्त्र का प्रारंभ होता है। ये जो भारतीय दर्शन है उसकी ये विशेषता है, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जहां से वो पाश्चात्य फिलोसॉफी की जिज्ञासा की, बुद्धि के स्तर पर है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और ये जिज्ञासा की जहां पूर्ति होती है वहां से दर्शन शास्त्र का प्रारंभ होता है, तो यही हमारे भारतीय दर्शन है। दर्शन तो वैसे तो वेद है, संस्कृत में विद धातु है, वर्ब विद, विद ज्ञाने, और विद ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का शास्त्र उनको बोलते हैं वेद। कोई भी ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत की यदि आपको डिक्शनरी लेनी है तो यह डिक्शनरी का प्रामाण्य आपको पता करना है तो डिक्शनरी में से विद धातु को देखना है, कहीं अर्थ है ये विद के। तो यही विद शब्द से वेद शब्द आया है, वेद नाम जो ज्ञान, इंद्रियों के परे का ज्ञान, इंद्रियातीत ज्ञान है, उसको अर्जित करने के लिए जो शास्त्र आए हैं उसको बोलते हैं वेद। इंद्रियों के सन्मुख हमारी आंख, कान, जिह्वा, हमारी जो इंद्रिया है वो जज कर सके, ऐसा लौकिक ज्ञान को हमारे सामने बहुत है, किंतु इंद्रियातीत जो ज्ञान है वो हमें कहां से प्राप्त करना है, तो उसके लिए है वेद। और वेद से हमें जब ज्ञान प्राप्त करना है तो किस प्रकार से जाना है, तो वेद के सामने कई प्रकार के महर्षि गए ज्ञान लेने के लिए, और वही वेद से अलग अलग प्रकार से अध्यात्म तत्व का हमारे ऋषिकों को साक्षात्कार हुआ, और उसको बोलते हैं दर्शन। क्या दर्शन? दर्शन शब्द है, दर्शन में दृश्य प्रेक्षणे देखना ये धातु है, अच्छी तरह से देखना यही दर्शन है। कैसे देखना है, कितनी प्रकार के दृष्टिकोण है, तो यही अलग अलग दृष्टिकोण, यही अलग अलग दर्शन हुए। तो वेद को प्रामाण्य पी के आप जमीन पे गिर जाओ, थोड़ी सुध-बुध आए तो खड़े होके पुनः पियो और वही समाधि में रहो, ऐसा चिंतन है जो भोगवादी बोलते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर को प्रसन्न करो। तो ये भोगवादी विचारधारा है जिसको नास्तिक दर्शन बोलते हैं। तो 6 आस्तिक दर्शन हुए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। हमारे ऋषियों ने ये सृष्टि का जो दर्शन किया वो दृष्टिकोण है, वही दर्शन है। सांख्य एक दृष्टि है सृष्टि को देखने की, योग एक जीवन जीने की दृष्टि है, कला है। ये जो उपनिषद है वो उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन है। तो ये अलग अलग प्रकार के दर्शन है। सांख्य दर्शन, संख्या क्रियते इति सांख्यम, सांख्य ये दर्शन क्या है? तो सांख्य है ये 24 तत्वों से रचित ये सृष्टि का निरूपण करता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पान, अपान, व्यान, समान, उदान, ये जो 24 तत्व का हमारा शरीर है। तो सांख्य बताता है कि ये 24 तत्व रूपी जो प्रकृति है वो प्रकृति ही कर्त्री, प्रकृति ही ये सब कार्य करती है। तो हमारी आंख विषय में जाती है तो ये देखने का काम आंख का है, जिह्वा है, वाणी है, वो बोलती है। तो यही इंद्रियों अंतः के कर्तृत्व का आरोपण करता है, वही दर्शन है सांख्य दर्शन। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य जीवात्मा है वो तो कूटस्थ है, स्थिर है। यदि इंद्रिया में शरीर के स्तर पर या सृष्टि के स्तर पर कोई विक्षेप होता है तो सांख्य दर्शन करने वाला जो साधक है वो क्या चिंतन करेगा कि ये तो मन विचार करता है, मैं इसे भिन्न हो, इतना गाली सुना दी मानो, सुनता कोई है, कोई और हो, मुझे तो क्या होगा, मन में आवेश आने लगेगा, कोई बोलेगा आप तो महाशय सिंह जैसे, कुछ नहीं, शब्दों की ही तो कृतित्व को भूल के जो शब्द बोले गए हो, शब्द के साथ हम जब एक रूप हो जाते हैं तो क्रोध का आवेग जाग जाता है, आनंद हो जाता है प्रशंसा सुन के। तो एक दृष्टि से तो हमारे आत्मा के लिए और हमारी स्थिति के लिए, हमारी स्थिरता के लिए यही सब क्लेश हुए, और यही क्लेश अखंड 2400 घंटे हमें ये जगत में व्यस्त रखते हैं, यही शब्दों की दुनिया में, स्पर्श की दुनिया में, रूप की, रस की, गंध की दुनिया में, इंद्रियों अंतःकरण से ग्रहण होने वाले सभी विषयों में हम अपना कर्तृत्व, हमारे आत्मा को जोड़ देते हैं और इसीलिए उनसे सुख। ये सब सोच चिंतन करके आत्म तत्व से ही हमारे अध्यात्म दर्शन का प्रारंभ हुआ, और इसीलिए बोलता हूं कि आज तक होती है वही अनुभूति से और वही आत्म कक्षा से हमारे प्रारंभ होता है लिए हम सब प्रयास करते ही हैं, अपने आसपास ऐसी व्यवस्था का प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दुख कम हो जाए। परिस्थिति को बदलना हाँ, मनस्थिति इतना भी करो कम ही रहेगा, ताकत नहीं है कि हमें दुखी कर सके। और जैसे हम सफल भक्तों के गाते हैं, गुणगान गाते हैं, गान गाते हैं यहीं पे, हजू क्या गुजरात में अध्यात्म पथ चलने को नहीं चुना, बहुत सीधे सादे, किंतु कैसी उनकी स्थिति, मनस्थिति। घर में कुछ संपत्ति नहीं, कल क्या खाएंगे वो भी प्रश्न, ऐसी घर की संपत्ति, ऐसा लगे कि विश्व के टॉप 10 धनिक में उनका नाम आ गया है। वैसा आनंद सतत उनके चेहरे पर रहता था, उनके मन में रहता था। क्यों? क्योंकि स्थिति को कंट्रोल करना उन्हें आ गया था। घर में तो कुछ नहीं था। हे गरथ मारु गोपी चंदना, तुलसी है मनोहार, साचू नाणु मारे शामलो रे, हे मारे दौलत मा झांझ पखवाज रे, श्यामला गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, श्यामला गिरधारी। गरथ मारू गोपी चंदन तुलसी हेमनो हार, ये तुलसी की माला मेरे लिए सुवर्ण की माला के समान है। ये और ये तिलक करने के लिए जो गोपी चंदन आता है, तो यही मेरी सब संपत्ति। दौलत में झांझ पखवाज, नारायण ना गुणला गाता, नर न होए कोई दुखियो रे, भगवान का गुणगान में करता हूं और भगवान के संबंध से मुझे इतनी प्रसन्नता, तृप्ति, संतोष की अनुभूति होती है कि ये भगवान जिसे जिन्हें मिले, तो ये भक्ति करने वाला जगत में भला कोई दुखी हो सकता है क्या? देखो, सुख के लिए, अनुकूलता के लिए, भौतिक उपलब्धियां बहुत करने के लिए लोग पीछे दौड़ते हैं, किंतु इनके पास तो ऐसे जिस कोई चीज नहीं है तो भी परम आनंद की दशा में है। और आजकल मैंने एक बहुत देखा है कि लाखों करोड़ों अरबों रुपया पाने के तो थोड़ा स्थान बदल गया पड़ा, तो थोड़ा आज लेट हो। मर्चेंट है, उनके एक बेटे, उन्हें बहुत आनंद आया, स्वामी समय है तो अच्छा हम बैठेंगे, तो राधा दुख तो कहीं बाहर तो हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा अनुभव कहीं बार होता है कि भौतिक उपलब्धियां सब प्राप्त होने के बाद, भौतिक उपलब्धियां भौतिकता की नहीं है, सुख की है, आनंद की है, और आनंद की क्यों है, के लिए ही आनंद खोजेगा। किंतु प्रॉब्लम क्या है कि एड्रेस गलत मिल गया। आनंद की ही जरूरत है, किंतु वो आनंद के लिए भौतिक विषयों के पीछे जीव दौड़ने लगता है। आनंद प्राप्त करने तो ऐसे कोई महापुरुष संत तो हमारा जो शास्त्र है, सांख्य के द्वारा इंद्रियों अंतःकरण का स्वरूप जान लिया, तो योग के द्वारा अपने इंद्रियों अंतःकरण को संयमित करके कैसे हमें एकाग्र करना है और अपने ध्येय में जोड़ना है, तो ये दृष्टि है, हमें योग दर्शन सिखाता है। न्याय वैशेषिक, वो अणु द्वैणुक त्रैणुक से यह सृष्टि का प्रारंभ, तो हमारे जो गौतम कणाद ऋषि जो न्याय वैशेषिक दर्शन के दृष्टा है, तो वो ये भारतीय दर्शन के अणु वैज्ञानिक है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं, मूलतः साइंस तो ये विज्ञान में है। सर आइजेक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण की खोज की, ऐसा हम बोलते हैं, किंतु गुरुत्वम क्या है उनका लक्षण तो गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र में आज से हजारों साल पहले बोल दिया है। वही लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ग्रेविटी का, न्याय और वैशेषिक बाद में आता है पांचवा, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा मानो कर्म का दर्शन है, यज्ञ यागादिक कर्मों के बाद हमारे कर्मों को कैसे शुद्ध किया जाए, हमारे कर्म को कैसे पवित्र किया जाए, और कर्म करते करते हम मोक्ष दशा को प्राप्त कैसे हो, उसके लिए है पूर्व मीमांसा। और बाद में आता है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा नाम वेदांत। वेद अनंता वै वेदाः, वेदाः अनंता है, अनंत वेद है, और वो वेद की अनंत शाखाएं है। तो प्रति शाखा में, प्रति चैप्टर में जो अंत का जो भाग है उनको वेदांत बोलते हैं। प्रत्येक शाखा में 90% कर्मकांड का निरूपण है और 5-10% वो ज्ञान कांड का निरूपण है। तो पूर्व में कर्म का निरूपण ही इसलिए पूर्व मीमांसा बोलते हैं, और उत्तर में ज्ञान का निरूपण है इसलिए उत्तर मीमांसा बोलते हैं। और जो शाखा है वो ही वेद है, और वेद के अंत में जो ज्ञान भाग का निरूपण किया है उपनिषदों में, इसलिए उपनिषदों को वेदांत बोलते हैं। और इसीलिए हम जो ईशावास्य उपनिषद का मनन चिंतन करेंगे वो है वेदांत। क्या है? वेदांत। प्रत्येक शाखा के अंत में जो ज्ञान कांड है, सार का जो तत्व का निरूपण किया गया है, उसको बोलते हैं वेदांत। और वही वेदांत का हम चिंतन करेंगे और मनन करेंगे। तो ये है दर्शन की पूर्व भूमिका। तो षड दर्शन, उनमें ये उपनिषद है वो उत्तर मीमांसा में आता है और उनको वेदांत बोलते हैं। तो उपनिषद तो जैसे वेद की शाखाएं अनंत है, चैप्टर अनंत है, तो शाखाएं अनंत है, तो शाखा के अंत में लिखा गया जो उपनिषद है, उपनिषद भी अनंत ही रहेंगे। हमें कुछ उपनिषद आज प्राप्त हुए हैं, तो 108 से ज्यादा उपनिषद है, किंतु उनमें भी प्रधान दशोपनिषद बोलते हैं। दशोपनिषद ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय, तैतरेय, बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये 10 उपनिषद है वो प्रधान उपनिषद है। ये 10 उपनिषद में ये वेदांत का सार आ जाता है। इसीलिए कोई भी संप्रदाय को यदि वैदिक दायरे में सिद्ध होना है तो पहले 10 है वो उनमें स्थिर करनी है, तभी वो संप्रदाय वैदिक कहा जाएगा। तो ये 10 उपनिषद है वो सार है, और 10 उपनिषद में भी कोई सार है, प्रधान है, तो वो है ईशावासी उपनिषद। केवल 18 मंत्र है, किंतु जीवन जीने की जड़ी बुट्टी समान यह उपनिषद है। और ये उपनिषद के बारे में महात्मा गांधी जी तो ऐसा बोलते हैं, बोलते थे कि पूरे विश्व में सभी लाइन आ रहे और केवल ये ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये केवल पहला मंत्र ही बच जाए तो भी सब कुछ बच गया है। जरा कल्पना करो, ये महात्मा गांधी का कोटेशन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो कल से हम ईशावास्य उपनिषद उनका प्रारंभ करेंगे। प्रथम शांति मंत्र है पूर्ण मदह पूर्णमिदम, वहीं से प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए ये उपनिषद की ये पूर्व भूमिका, वेदांत क्या है, दर्शन क्या है, दर्शन नाम एक दृष्टिकोण है, जीवन जीने का दृष्टिकोण क्या है, तो योग का एक दृष्टिकोण है, सांख्य दृष्टिकोण